नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं रत्ना पांडे। मुख्य समाचार। भारत ने पश्चिम एशियाई देश में जारी अशांति के मद्देनजर अपने नागरिकों से तुरंत ईरान छोड़ने का आह्वान किया। देशव्यापी सरकार विरोधी प्रदर्शनों पर सुरक्षा बलों की कार्रवाई में मृतकों की संख्या 2600 से अधिक हुई। तेहरान ने चेतावनी दी, अगर वॉशिंगटन ईरान में जारी प्रदर्शनों में हस्तक्षेप करता है तो पश्चिम एशिया में स्थित अमरीकी ठिकानों पर जवाबी कार्रवाई की जाएगी। भारत और चीन ने द्विपक्षीय संबंधों को स्थिर करने और पुनर्निर्माण में हुई प्रगति पर चर्चा की। थाईलैंड में एक ट्रेन पर क्रेन गिरने से 32 लोगों की मौत हो गई। और न्यूजीलैंड ने राजकोट में खेले गए दूसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में मेजबान भारत को 7 विकेट से हराया। और अब समाचार विस्तार से। भारत ने सुरक्षा के मद्देनजर अपने नागरिकों को ईरान की यात्रा से बचने की कड़ी सलाह दी है। विदेश मंत्रालय ने अपने ताजा परामर्श में कहा है कि ईरान में बिगड़ते हालात को देखते हुए भारतीय नागरिकों को अगले आदेश तक ईरान की यात्रा नहीं करने की कड़ी सलाह दी जाती है। तेहरान स्थित भारतीय दूतावास के परामर्श में भी ईरान में रह रहे भारतीय नागरिकों को वाणिज्यिक उड़ानों सहित परिवहन के उपलब्ध साधनों का उपयोग करके ईरान छोड़ने की सलाह दी गई है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
विदेश मंत्रालय ने अपने परामर्श में ईरान में रहने वाले भारतीय नागरिकों और भारतीय मूल के लोगों से सावधानी बरतने और विरोध प्रदर्शन वाले इलाकों में जाने से बचने को कहा है। ईरान में रेजिडेंट वीजा पर रहने वाले भारतीय नागरिकों को भारतीय दूतावास में रजिस्टर करने की सलाह दी गई है, अगर उन्होंने अभी तक ऐसा नहीं किया है। तेहरान में भारतीय दूतावास के इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर है +98912810915 +98912810909 +98912810902 और +98993217935। दूतावास से ईमेल आईडी cons.tehran@mea.gov.in पर ईमेल के जरिए भी संपर्क किया जा सकता है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने आज ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराग़ची से फोन पर बातचीत की। डॉक्टर जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि दोनों पक्षों ने ईरान और उसके आसपास की बदलती स्थिति पर चर्चा की। इस बीच ईरान ने अमरीकी सैनिकों की सहायता करने वाले पड़ोसी देशों को चेतावनी दी है कि अगर अमरीका देश में हो रहे विरोध प्रदर्शनों में हस्तक्षेप करता है तो वो अमरीकी ठिकानों पर जवाबी कार्रवाई करेगा। खबरों के अनुसार ईरान ने अमरीका के सहयोगी देशों से ईरान पर अमरीका के हमले या किसी भी तरह के हस्तक्षेप को रोकने को कहा है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराग़ची और अमरीका के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ के बीच सीधी बातचीत निलंबित होने की भी खबर है। अमरीका ने कतर में अल उदीद एयरबेस पर कुछ कर्मचारियों के लिए शाम तक स्थान छोड़ने का परामर्श जारी किया है। ये ईरान में अशांति और क्षेत्रीय तनाव बढ़ने के कारण उत्पन्न सुरक्षा चिंताओं को दिखाता है। ये परामर्श राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस बयान के बाद आया है जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर ईरानी अधिकारी प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई जारी रखते हैं तो वो तेहरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई के लिए तैयार हैं। एक रिपोर्ट।
अमेरिका के कतर में मुख्य एयरबेस पर सुरक्षा परामर्श जारी करने से पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ गया है। ईरान में विरोध प्रदर्शन फैलते जा रहे हैं जहां अधिकारियों ने लंबे समय तक इंटरनेट बंद कर दिया है और मानवाधिकार समूह बढ़ते पीड़ितों की जानकारी दे रहे हैं। अमेरिका ने चेतावनी दी है कि अगर कार्रवाई जारी रहती है तो वे सैन्य विकल्पों पर विचार कर सकता है। इसके जवाब में तेहरान ने चेतावनी दी है कि पड़ोसी देशों में अमरीकी ठिकानों को निशाना बनाया जा सकता है। भारत ने भी अपने नागरिकों के लिए ईरान की यात्रा से बचने की सलाह दी है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ विश्व दर्पण के शक्ति सिंह।
इस तनाव के बीच ईरान के कई नागरिकों ने आज सीमा पार करके तुर्की में प्रवेश कर लिया है। मानवाधिकार समूह ने कहा कि अब तक ईरान में विरोध प्रदर्शनों में 2600 से अधिक लोग मारे गए हैं। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने आज नई दिल्ली में चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की केंद्रीय समिति में अंतर्राष्ट्रीय मामलों की उपमंत्री सुश्री सुन हियान से मुलाकात की। विदेश मंत्रालय द्वारा जारी बयान में कहा गया है कि दोनों देशों ने व्यापार और जन केंद्रित गतिविधियों को प्राथमिकता देते हुए द्विपक्षीय संबंधों को स्थिर करने और पुनर्निर्माण में हुई प्रगति पर चर्चा की। विदेश सचिव ने दोनों देशों के संबंधों के पुनर्निर्माण के लिए प्रतिबद्धता दोहराने पर बल दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली में राष्ट्रमंडल देशों की संसदों के अध्यक्षों और पीठासीन अधिकारियों के 28वें सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि सम्मेलन में मजबूत लोकतांत्रिक संस्थाओं को बनाए रखने में अध्यक्षों और पीठासीन अधिकारियों की भूमिका सहित समकालीन संसदीय मुद्दों पर व्यापक रूप से चर्चा होगी।
3 दिन के इस सम्मेलन में 60 से अधिक राष्ट्रमंडल देशों और अर्ध स्वायत्त संसदों के अध्यक्ष और पीठासीन अधिकारी भाग लेंगे। इसका उद्देश्य संसदीय लोकतंत्र के विभिन्न स्वरूपों के बारे में ज्ञान और समझ को बढ़ावा देना और संसदीय संस्थाओं का विकास करना है। सम्मेलन के दौरान संसद में AI के उपयोग, प्रतिभागियों के बीच सर्वोत्तम प्रथाओं और नवीन विचारों को साझा करने, सांसदों पर सोशल मीडिया के प्रभाव, संसद के बारे में जनता की समझ को बढ़ाने और सांसदों की सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण सहित विभिन्न विषयों पर सत्र आयोजित किए जाएंगे। सम्मेलन की बैठक के समापन के बाद लोकसभा अध्यक्ष यूके हाउस ऑफ कॉमन्स के अध्यक्ष लिंडसे होयल को इसकी अध्यक्षता सौंपेंगे। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से फरहत नाज।
राष्ट्रमंडल देशों की संसद के अध्यक्षों और पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन के इतर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज केन्या की संसद के अध्यक्ष डॉक्टर मोसेस मासिका वेतनगुलास के साथ चर्चा की। श्री बिरला ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारत और केन्या के परस्पर संबंध मजबूत हुए हैं और दोनों के बीच विभिन्न क्षेत्रों में भागीदारी हुई है। श्री बिरला ने आज त्रिनिदाद और टोबैगो के संसद अध्यक्ष जगदेव सिंह और सेशल्स की संसद अध्यक्ष सुश्री अजारेल अर्नेस्टा से भी मुलाकात की। भारतीय नौसेना का पोत कौंडिन्य INSV गुजरात से पहली यात्रा पूर्ण करके आज मस्कत के सुल्तान काबूस बंदरगाह पर पहुंच गया है। INSV कौंडिन्य ने पिछले साल 29 दिसंबर को गुजरात के पोरबंदर से अपनी यात्रा शुरू की थी। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने मस्कत के सुल्तान काबूस बंदरगाह पर भारतीय नौसेना के कौंडिन्य जहाज के चालक दल का स्वागत किया। बैंकॉक से थाईलैंड के उत्तर पूर्वी क्षेत्र की ओर जा रही यात्री रेलगाड़ी आज दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इस घटना में 32 लोगों की मौत हो गई और 65 लोग घायल हुए हैं। थाईलैंड पुलिस के अनुसार यह घटना थाईलैंड की राजधानी से लगभग 230 किलोमीटर उत्तर पूर्व में स्थित नाखौन रच्चा सीमा प्रांत के सीखियो जिले में हुई। थाईलैंड के परिवहन मंत्री फिपात रच्चा किट प्रकर्ण ने बताया कि दुर्घटना के समय रेलगाड़ी में लगभग 195 यात्री सवार थे। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में आज हुए भूस्खलन में 6 लोगों की मौत हो गई। यह घटना कोहाट जिले में घटी, जहां भूस्खलन के बाद कई लोग मलबे के नीचे दब गए। बचाव दल ने अब तक मलबे के नीचे से 4 पीड़ितों के शव बरामद किए हैं। 3 मैचों की एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला के दूसरे मुकाबले में न्यूजीलैंड ने भारत को 7 विकेट से हरा दिया है। भारत के लिए 285 रन के लक्ष्य को न्यूजीलैंड ने 48वें ओवर में 3 विकेट पर 286 रन बनाकर हासिल कर लिया। मेहमान टीम के लिए डेरिल मिचेल ने 117 गेंदों में नाबाद 131 रन की शतकीय पारी खेली। अब श्रृंखला 1-1 से बराबरी पर है और श्रृंखला का तीसरा और अंतिम मुकाबला 18 जनवरी को इंदौर में खेला जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने पश्चिम एशियाई देश में जारी अशांति के मद्देनजर अपने नागरिकों से तुरंत ईरान छोड़ने का आह्वान किया। देशव्यापी सरकार विरोधी प्रदर्शनों पर सुरक्षा बलों की कार्रवाई में मृतकों की संख्या 2600 से अधिक हुई। तेहरान ने चेतावनी दी, अगर वॉशिंगटन ईरान में जारी प्रदर्शनों में हस्तक्षेप करता है तो पश्चिम एशिया में स्थित अमरीकी ठिकानों पर जवाबी कार्रवाई की जाएगी। भारत और चीन ने द्विपक्षीय संबंधों को स्थिर करने और पुनर्निर्माण में हुई प्रगति पर चर्चा की। थाईलैंड में एक ट्रेन पर क्रेन गिरने से 32 लोगों की मौत हो गई और न्यूजीलैंड ने राजकोट में खेले गए दूसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में मेजबान भारत को 7 विकेट से हराया। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।